ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय 19 श्लोक क्रमांक 31। प्रशांतम् आसीनम् अकुंठ मेधसम् मुनिम् नृपो भगवतो अभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्नावहित कृतांजलिर् नत्वा गिरा सुनृतयान् वपृच्छत। प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसम् मुनिम् नृपो भगवतोऽभ्युपेत्य। प्रणम्य मूर्ध्नावहितकृताञ्जलि नत्वा गिरा सुनृतयान् वपृच्छत। प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसम् मुनिम् नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य। प्रणम्य मूर्ध्ना वहितकृताञ्जले नत्वा गिरा सुनृतयान् वपृच्छत। प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसम् मुनिम् नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य। प्रणम्य मूर्ध्ना वहितकृताञ्जले नत्वा गिरा सुनृतयान् वपृच्छत। माताजीस प्रशांतम पूर्णतया शांत आसीनम बैठे हुए अकुंठ निसंकोच भाव से मेधसम पर्याप्त बुद्धि संपन्न मुनिम महर्षि को नृप राजा महाराज परीक्षित भागवतः महान भक्त अभ्युपेत्य निकट जाकर प्रणम्य प्रणाम करके मूर्धना शिर से अवहितः ठीक से कृतांजलि हाथ जोड़कर नत्वा विनम्रता पूर्वक गिरा शब्दों से सुनृतया मीठी वाणी से अन्व पृच्छत पूछा। अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। तब प्रखर मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमता से उत्तर देने के लिए सन्नद्ध थे। तब परम भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। तात्पर्य, महाराज परीक्षित द्वारा गुरु से प्रश्न की जो मुद्रा अपनाई गई वह शास्त्र के आदेशों के सर्वथा उपयुक्त है। शास्त्रीय आदेश है कि दिव्य विज्ञान समझने के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के पास विनीत होकर जाए। महाराज परीक्षित अब मृत्यु से मिलने के लिए उद्यत थे और 7 दिनों की अल्प अवधि के पश्चात वे भगवत धाम में प्रवेश करने की विधि जानने वाले थे। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में मनुष्य को गुरु के पास पहुंचना पड़ता है। जब तक जीवन की समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता न हो तब तक गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। जिसे गुरु के समक्ष प्रश्न पूछने की समझ न हो उसे गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु की सारी योग्यताएं सुखदेव गोस्वामी में पूर्णतया प्रकट थी। गुरु तथा शिष्य अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी एवं महाराज परीक्षित दोनों ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से सिद्धि प्राप्त की। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यासदेव से श्रीमद् भागवत सीखी। लेकिन उन्हें उसे सुनाने का अवसर नहीं मिला था। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित के समक्ष भागवत का पाठ किया और बिना हिचक के महाराज परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर दिए। इस प्रकार गुरु तथा शिष्य दोनों मोक्ष के भागी हुए। तब प्रखर मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमता से उत्तर देने के लिए सन्नद्ध थे। तब परम भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। इस अध्याय का शीर्षक है सुखदेव गोस्वामी का आगमन। इस प्रथम स्कंद का ये अंतिम अध्याय है, अर्थात इस पूरे स्कंद में अब तक इतने सारे अध्याय हुए, ये 19वां अध्याय। अब सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ है, कहां? नैमिषारण्य शुकताल, गंगा के तट पर, जहां परीक्षित महाराज वो उपस्थित हैं और सारे ऋषि मुनि एकत्रित हैं। और परीक्षित महाराज जिन्हें श्राप मिला है 7 दिन में तक्षक आकर डसने वाला है, ये जानते हुए कि 7 दिन बाकी है केवल उनके जीने के, परीक्षित महाराज अपना राज्य का परित्याग करते हैं, परिवार का परित्याग करते हैं और अकेले गंगा के तट पर इन सब ऋषि मुनि जो एकत्रित हुए हैं, बड़े बड़े दिग्गज, कोई साधारण ऋषि मुनि नहीं, पूरे ब्रह्मांड के जो अपने अपने गुट के, अपने अपने ग्रुप के जो नेता लीडर, ये सब वहां पर उपस्थित। और इससे समझ में आता है कि परीक्षित महाराज कोई साधारण राजा नहीं थे, कि जिस राजा की मृत्यु के समय इतने सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं तो वो कोई साधारण राजा नहीं हो सकता। और परीक्षित महाराज एक असाधारण राजा कैसे हुए? क्योंकि उनका संपर्क था पांडवों के साथ। अर्जुन, हालांकि यहां पर कोई भी परीक्षित महाराज को यह नहीं बोल रहा कि इतना बड़ा अपराध किया, शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, अब भुगतो। किसी ने भी ये नहीं कहा परीक्षित महाराज से कि अब जो श्राप मिला है तो हम क्या करें, गलती तुम्हारी थी, सांप क्यों डाला? इतनी सी प्यास सहन नहीं हो सकती, क्षत्रिय प्यास सहन नहीं कर सकते, तो क्या यही कारण था? कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं, अरे परीक्षित महाराज जैसे महान राजा वो प्यास सहन नहीं कर सके। कई लोग तो ये प्रश्न पूछते हैं कि अपने साथ एक वाटर बॉटल ले जाते। अरे जब भी कोई बाहर निकलता है तो ये सब कुछ लेकर जाता है ना, खाने का टिफिन, पीने के लिए कोई बॉटल लिए सर, वो तो राजा, कोई था नहीं वहां उनके साथ कुछ ये सब साथ में लिए हुए, क्योंकि भगवान का प्रयोजन था। वो प्यास भी भगवान ने ही लगाई थी। जैसे भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, कि भगवान जो हमारे हृदय में स्थित हैं, हमें स्मृति देते हैं जिससे हम भगवान की तरफ जा सके। अपोहनम च, विस्मृति भी वही देते हैं, और दोनों स्मृति और विस्मृति का कारण क्या है, ताकि हम भगवान के निकट जाएं। तो यहां पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी स्मृति और विस्मृति परीक्षित महाराज के संदर्भ में भगवान द्वारा प्रेरित। क्यों? क्योंकि भगवान हमें श्रीमद् भागवत देना चाहते थे। श्रीमद् भागवत क्या है? स्वयं भगवान, भगवान का विग्रह। तो भगवान ने अपना स्वयं का विग्रह तो परीक्षित महाराज को उनकी माता के गर्भ में दे ही दिया था। परीक्षित महाराज को दर्शन तो हो ही चुका था भगवान का जन्म से पहले। तो हमें ये श्रीमद् भागवत देने के लिए भगवान ने, देखिए परीक्षित महाराज एक दृष्टिकोण से परीक्षित महाराज को हमारी सेवा में लगा है। तो परीक्षित महाराज इतने बड़े राजा अब शापित, 7 दिन बचे हैं, और परीक्षित महाराज बहुत ज्यादा उतावले हैं। अब ये जो उतावलापन होता है, ये हम देखते हैं इस भौतिक संसार में भय के कारण होता है। जब हम लोग भयभीत रहते हैं तो बहुत उतावले हो जाते हैं, परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है, उतावले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भय रहता है, नौकरी मिलेगी कि नहीं, भय है, इसलिए उतावले रहते हैं, इसलिए उतावले घूमते फिरते हैं। तो जो भी इस भौतिक संसार में हम अनुभव करते हैं वो इस भय के अधीन होकर करते हैं। हर समय ये भय मंडराता रहता है हमारे ऊपर, और ये भय किस प्रकार का है? कुछ वस्तुएं जो हमारे पास हैं वो कहीं हमसे छीन न ली जाए, उसका भय। और जो वस्तु हमारे पास नहीं है तो ये भय रहता है, पता नहीं कभी मिलेगी कि नहीं। तो चाहे कोई वस्तु है या नहीं है, हम भय में रहते हैं। श्रील प्रभुपाद अपनी छोटी पुस्तकों में लिखते हैं कि एक चिड़िया जो सुबह सुबह दाना चुगती है, वो एक दाना खाती है और 100 बार यहां वहां देखती है। भय कि कोई मुझे मारने तो नहीं आ रहा। परंतु यहां पर परीक्षित महाराज उतावले किसके लिए हैं? वो भय के कारण नहीं, वो उतावले हैं भगवत धाम जाने के। तो यहां पर शुकदेव गोस्वामी का आगमन होता है। अब ये कुछ नहीं लिखा गया कि शुकदेव गोस्वामी कहां से आए। ऐसा नहीं था शुकदेव गोस्वामी ने पहले किसी एडवांस पार्टी को भेजा कि मैं आ रहा हूं, वहां जाके आसन रेडी रखो, भागवत कथा होगी 7 दिन। किसी को पता नहीं था शुकदेव गोस्वामी आने वाले। और शुकदेव गोस्वामी आए कैसे, उनका आगमन कैसे हुआ? कुछ अल्प बुद्धि वाली स्त्रियां और बच्चे पत्थर मारते हुए सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी को चिढ़ाते हुए, पागल समझते हुए सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से प्रवेश की। परंतु इन श्लोकों में बताया गया है कि परीक्षित महाराज उन सब एकत्रित ऋषि मुनि से यह प्रश्न पूछ रहे थे कि मैं अब मरने वाला हूं, तो मेरे लिए सर्वोच्च मेरा कर्तव्य क्या है बताइए। तो यदि हम अब इस श्लोक में देखें कि सुखदेव गोस्वामी ने अब प्रवेश किया और वो शांत भाव से बैठ गए वहां पर आसन पर, तो उनका टाइमिंग देखिए आने का। श्रीमद् भागवत में यदि आप देखो तो बहुत से ऐसे प्रसंग जहां पर भगवान के भक्तों ने सही समय पर आगमन किया, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने सही समय पर आगमन किया। यदि सुखदेव गोस्वामी थोड़ा जल्दी आते तो वहां पर कोई नहीं मिलता, यदि 7 दिन बाद आते तब भी कोई नहीं मिलता। तो अंग्रेजी में जिसे कहते हैं वेल टाइम्ड, राइट टाइम, तो सुखदेव गोस्वामी का आगमन राइट टाइम पर हुआ। जब ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज जैसे ही पहुंचे और सुखदेव गोस्वामी तुरंत पीछे पीछे परीक्षित महाराज के वहां पर उपस्थित। परीक्षित महाराज पहुंचने के बाद जब परीक्षित महाराज पूर्ण उतावलेपन में, उत्सुकता में, जब उन्होंने ये सारे प्रश्न पूछे इन सब ऋषि मुनि से और ये सारे ऋषि मुनि ठीक जवाब नहीं दे पा रहे, उस समय सुखदेव गोस्वामी पहुंचे कि अब यही प्रश्न, ये जो सुखदेव गोस्वामी आए हैं, और ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज जानते थे कि ये सुखदेव गोस्वामी मुझे आगे चलकर भागवत सुनाने वाले हैं। यदि सुखदेव गोस्वामी उन सब ऋषि मुनि के साथ आए होते तो परीक्षित महाराज विशेष रूप से इनको प्रश्न नहीं पूछते, अब जितने भी प्रश्न वो पूछने वाले हैं। इसलिए भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को उस समय भेजा जब परीक्षित महाराज ने सब सारे प्रश्न सभियों को पूछ चुके थे और किसी के पास ठीक निश्चित उत्तर नहीं था। और उस समय जब सुखदेव गोस्वामी आते हैं, इसे कई बार ये देखा गया है कि जब हम कई भक्तों के साथ बैठे होते हैं और कुछ चर्चा चल रही होती है और उस समय कोई दूसरा एक भक्त बाहर से आता है, तो यदि उस चर्चा में कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा तो फिर हम इससे पूछते हैं, चलो क्योंकि वो अभी अभी आया है। तो वैसे ही सुखदेव गोस्वामी जैसे ही प्रवेश किए तो अब सुखदेव गोस्वामी की सुंदरता का वर्णन दिया गया है पिछले श्लोकों में कि सबसे पहले इतने सुंदर सुखदेव गोस्वामी, तो सुखदेव गोस्वामी को देखने मात्र से सभी आकर्षित हो गए। परंतु उनकी सुंदरता कैसी थी? उनकी सुंदरता दिव्य थी, दिव्यता छलक रही थी उनकी सुंदरता में, और इसलिए परीक्षित महाराज अंदर से प्रेरित हुए। यहां पर भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को भेजा और उन्हीं भगवान ने परीक्षित महाराज को अंदर से प्रेरित किया कि वो सुखदेव गोस्वामी से ये सारे प्रश्न पूछे। जैसे हम ध्रुव महाराज की कथा यदि पढ़ें तो ध्रुव महाराज, उनका जब अपमान हुआ, अपमान होने के पश्चात फिर वो अपनी माता सुनीति के पास गए। माता सुनीति ने फिर वन में जाने के लिए कहा, और वन में जाते समय रास्ते में फिर नारद मुनि मिले। टाइमिंग देखिए नारद मुनि का, जैसे सुखदेव गोस्वामी का टाइम। अब नारद मुनि पहले भी आ सकते थे, जब अपमानित हुए थे उसी समय महाराज उत्तानपाद के सामने नारद मुनि आते और कहते ध्रुव मेरे गोद में बैठ जाओ। गोद में बैठना है, इधर बैठ जाओ। पूर्ण प्रकार से जब ध्रुव महाराज क्रोध अवस्था में और बदले की भावना में, क्रोध के साथ बदले की भावना, और तब तक नारद मुनि ने प्रवेश नहीं किया। जब सुनीति, माता सुनीति के पास ध्रुव महाराज गए और माता सुनीति ने ये संकेत किया, क्यों? वही संकेत नारद मुनि पहले आकर कर सकते थे ध्रुव महाराज को। तो क्यों नहीं नारद मुनि पहले आए? वो तो सब जान रहे हैं कि क्या क्या प्रसंग हो रहा है, क्योंकि नारद मुनि प्रतीक्षा में थे कि माता सुनीति के द्वारा अज्ञात सुकृति हो। माता सुनीति भगवत धाम गई क्योंकि माता सुनीति ने ध्रुव महाराज को यह आदेश दिया कि जाकर विष्णु की भक्ति करो और तपस्या इस प्रकार से वन में जाके। तो नारद मुनि इस प्रतीक्षा में थे कि माता सुनीति की अज्ञात सुकृति हो ताकि वो भी भगवत धाम जाए अंततः, इसलिए वो वेट किए। और फिर ध्रुव महाराज रास्ते में जब वो चल रहे थे तब नारद मुनि ने उन्हें रोका और फिर नारद मुनि ने उन्हें वो मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा कि किस प्रकार की तपस्या तुम्हें करनी चाहिए। तो ध्रुव महाराज की उस स्थिति में, उस समय नारद मुनि का पहुंचना बहुत उपयुक्त था। जैसे यहां पर परीक्षित महाराज की उस तीव्र स्थिति में सुखदेव गोस्वामी का पहुंचना, नारद मुनि कंस के महल में पहुंचते हैं, फिर देखिए उनका टाइमिंग कि कंस अब निश्चिंत बैठा है कि वो देवकी का आठवां पुत्र है तो क्या चिंता करने। तो उस समय नारद मुनि पहुंचते हैं और कंस को प्रेरित करते हैं कि एक एक पुत्र को तुम्हें मारना है, एक एक पुत्र को जब तक तुम नहीं मारोगे तब तक भगवान उतावले नहीं होंगे आने के लिए, क्योंकि तुम जितना ज्यादा पाप करोगे उतना जल्दी भगवान आएंगे। हालांकि उन छह पुत्रों को शाप भी मिला था तो वो भी एक प्रयोजन था। फिर नारद मुनि का टाइमिंग इसमें देखिए, सही टाइमिंग पर पहुंचना कंस को प्रेरित करने के लिए। नलकुवर मणिग्री, फिर से टाइमिंग देखिए नारद मुनि का। अब नल ऐसा नहीं था कि नलकुवर और मणिग्रीव हर समय उसी अवस्था में घूमते फिरते थे। कैलाश के उपवन में वो ठीक तरीके से भी रहते थे, ऐसा नहीं था कि हर समय वो उस मद्यपान में और निर्वस्त्र नहीं। तो नारद मुनि कभी भी वहां पर घूमते फिरते नलकुवर मणिग्रीव से मिलते, और बताओ कैसे चल रहा है सब कुछ, कुबेर जी कैसे हैं, साधना कैसी चल रही है, जब कैसा चल रहा है। तो इस प्रकार का वार्तालाप होकर नारद मुनि चले जाते। परंतु टाइमिंग देखिए, जब नलकोर और मणिग्रीव वो नशा किए हुए मंदाकिनी गंगा में, वो भी अंत प्रविष्ट। ऐसा नहीं कि वहां तट पर अब वो लोग प्रवेश कर रहे हैं उस समय नारद मुनि वहां पर पहुंचे, नहीं, जब पूरे पार्टी के बीच में थे वो, उनकी जो पार्टी चल रही थी उस समय नारद मुनि पहुंचे और पूर्ण प्रकार से जब उन स्त्रियों के संग में वो मग्न थे तब नारद मुनि पहुंचे, क्योंकि तब नलकोर और मणिग्रीव ने दुर्लक्षता दिखाई नारद मुनि के प्रति और उस दुर्लक्षता के वजह से नारद मुनि ने वो श्राप दिया या कृपा की। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि उनका टाइमिंग परफेक्ट था नलकोर और मणिग्रीव के उद्धार के लिए। मृगरारी का उद्धार करने के लिए फिर नारद मुनि पहुंचे, कौन से समय, जिस समय मृगरारी, अब ऐसा नहीं कि 2400 घंटे मृगरारी उन जानवरों को मारा करता, मृगरारी का भी अपना लंच टाइम होता, ब्रेकफास्ट और सब, परंतु नारद मुनि पहुंचे कौन से समय, जब मृगरारी उस नृशंस कार्य में लगा हुआ था, उसके ऑफिस आवर्स में। और फिर मृगरारी को उस स्थिति में दिखाया कि तुम क्या गलती कर रहे हो, कितना बड़ा पाप कर रहे हो तुम। हम यदि देखें कि विष्णु दूत अजामिल को बचाने के लिए कौन से समय आए, उनका भी टाइमिंग देखिए। अजामिल ने बहुत भक्ति भी की थी भगवान की और बहुत पाप भी किए, तो यमदूत जो होते हैं उनका भी टाइमिंग बहुत परफेक्ट होता है। इसलिए यमराज और यमदूत के विषय में कहा गया है कि वो परफेक्ट टाइम के लिए रुके रहते हैं कि कब इस जीव को नरक ले जाना है। शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु या यमराज जी वो कहां पर स्थित रहते हैं हर जीव के संदर्भ में, काल गर्हे करकेश, कि काल जो है वो सबके केशों को पकड़े हुए है। हमें लग रहा होगा कि अरे मेरे केश, मैं अभी अभी सवार के आया हूं, कौन पकड़ा है मेरे केश, ये तो इधर तो है ही नहीं। परंतु कहा गया है काल गर्हे कर केश, जो काल है मूर्तिमान काल, वो सबके केशों को कष्टा पकड़े है। तो एक हाथ से केशों को पकड़े हुए है और दूसरे हाथ से घड़ी देख रहा है। घड़ी में क्या, इसका समय कब लिखा हुआ है। और जैसे ही वहां पर बीप होता है, हो गया इसका समय, खींचो। तो यमदूत वो उस समय प्रवेश किए जब अजामिल अब 88 वर्ष का, अपने उस वृद्ध अवस्था में अजामिल मृत शैया पर लेटा हुआ और अब सारे मृत्यु के लक्षण, बस कुछ चंद सांसें बाकी, ठीक उस समय पूरा टाइमिंग लगाकर यमदूत पहुंचे। हमारे श्रीनाथ जी प्रभु बंबई के बता रहे थे कि वो जब एडमिट थे, उनका बाईपास सर्जरी हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उन्होंने अपनी आंखों से यमदूत देखे और वो अक्सर अपने प्रवचनों में इस प्रसंग को सुनाते हैं कि उन्होंने यमदूतों को देखा उस हॉस्पिटल में ऐसे घूमते हुए, जैसे वार्ड बॉय घूमते हैं और नर्सेस घूमते हैं, वैसे श्रीनाथ जी प्रभु ने देखा कि यमदूत भागते, और श्रीनाथ जी प्रभु उन कंपाउंडर डॉक्टर इन सबको बोल रहे हैं, अरे ये यमदूत भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, किसको पकड़ने जाए। और फिर वो देखते हैं कि उनके बगल वाले बेड की तरफ वो यमदूत गए और वो चिल्लाया जोर से और खत्म। और फिर उन्होंने देखा यमदूत वहां से निकलकर गए लेकर उसकी आत्मा को, और फिर डॉक्टर भागते हुए, अरे 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 गया एक पेशेंट। तो श्रीनाथ जी प्रभु फिर उनको बोला, अरे गया मैंने देखा जाते हुए, तो बुला रहा था। तो वो सब पूरा वृत्तांत दे रहे थे। उनसे यदि आप जाकर पूछो तो पूरा विस्तार से वो बताएंगे कि जैसे श्रीमद् भागवत में यमदूतों का वर्णन किया गया है, ठीक उसी प्रकार एकदम बड़े बड़े और इतने चौड़े कंधे और काला शरीर वाले, और उनके जो बाल ताम्र वर्ण के बाल, कॉपर कलर, तांबे का जो कलर होता है उस प्रकार के उनके बाल, लाल लाल आंखें और दांत बाहर निकले हुए, उस प्रकार के यमदूत। तो वो जब बता रहे थे तो उन्होंने इस मुद्दे पर भी जोर दिया कि उनका टाइमिंग यमदूतों का, कि वो देखते हैं कि अभी कोई पेशेंट जस्ट मरने ही वाला है, उस स्थिति में है, और जब वो देखते कि वहां पर वो घूमते हुए यमदूत अपना संग देते फिर उसको। तो अजामिल के प्रसंग में यमदूतों का टाइमिंग वैसा, परंतु यमदूत के साथ साथ विष्णुदूत दोनों एक साथ पहुंचे, एक यहां से एक यहां से, दोनों एक साथ पहुंचे, और अजामिल दोनों तरफ, एक तरफ यमदूतों को एक तरफ विष्णुदूतों को। तो यमदूत रुके हुए थे कितने वर्षों तक, पूरा हिसाब किताब निकाल कर रखा हुआ था। वो रुके हुए थे क्योंकि अजामिल काफी जिया, 88 वर्ष, और वो भी 88 वर्ष सत्युग का, तो बहुत लंबी आयु अजामिल की। तो अजामिल ने जब वो सारे कुकर्म चालू किए, उस समय अजामिल युवावस्था में था, तो युवावस्था से लेकर कितने वर्षों तक उसने ये सारे कुकर्म किए और सबका हिसाब किताब चित्रगुप्त रख रहे थे। तो पूरी यमपुरी में, यमलोक में अजामिल बहुत फेमस था, या इनफेमस। तो सभी चर्चा करते, अरे अजामिल ने ये किया, अजामिल ने ये किया, लिखो लिखो लिखो। और यमदूत उन्हीं आने से पहले, अजामिल को ले जाने से पहले सारी तैयारी कर आए थे कि कौन सा कमरा देंगे अजामिल को, कहां पर आदर सत्कार उसका होगा, सारी तैयारी कर आए थे, बोल कर आए थे कि सब ठीक रखना। तो इतने वर्षों तक वो उस प्रतीक्षा में कि अजामिल को ले जाने के लिए, और अजामिल ने अंत समय जब नारायण नाम का उच्चारण किया, तो अब विष्णुदूत देखिए, विष्णुदूतों का टाइमिंग। और यदि आप देखो तो अजामिल के ज्यादा पास यमदूत थे, क्योंकि अजामिल ये सारे कुकर्म पृथ्वी पर कर रहा था, तो पृथ्वी से ज्यादा पास यमपुरी है, नीचे ही है। और विष्णुदूत आए कहां से? वैकुंठ धाम से। वैकुंठ कितना ऊपर? तो सोचिए कि यमदूत जो पहले से तैयार और वो इतना पास अजामिल के, और विष्णुदूत जिनको तैयारी करने का कितना समय मिला आने के लिए, अजामिल ने जब कहा नारायण, और कहां से आना है उनको? वैकुंठ से। तो हो सकता था वो अजामिल को बोले अरे हम आए लेकिन अब लेट हो गए, चलो फिर कभी मिलते हैं, सॉरी लेट हो गए। नहीं, वैकुंठ विमान कभी लेट नहीं होता, और वैकुंठ विमान को चलाने वाले भी कभी लेट नहीं होते। तो परफेक्ट टाइमिंग उनका, जैसे ही नारायण विष्णुदूत वहां पर, और विष्णुदूत वहां पहुंचते ही पहले यमदूतों को रोक दिया, नहीं नहीं नहीं। तो अजामिल की स्थिति में हम देखते हैं कि दोनों का टाइमिंग परफेक्ट था, यमदूत और विष्णुदूत। इसलिए इस पहले स्कंद में एक अध्याय है पांडवाज रिटायर टाइमली, कि पांडवों ने किस प्रकार से अपना राज और गृह का त्याग सही समय पर, उचित समय पर किया। तो हम क्या सीखते हैं इन सब उदाहरणों से? इन सब उदाहरणों से हम ये सीखते हैं कि भक्ति में वही भक्ति के कार्य यदि उचित समय पर नहीं किए जाएं तो उसका फल शायद नहीं मिलेगा हमें। जैसे कि जप, अब भगवान के नाम का जप कौन से समय करना चाहिए, कौन सा उचित समय है भगवान के नाम का जप करने का, कौन सा उचित समय है? हा? अच्छा, सभी इस बात को स्वीकार करते हैं ब्रह्म मुहूर्त? थोड़ा कठिन प्रश्न है, सही टाइम पे नहीं पूछा। कोई और किसी का उत्तर? हाँ, थोड़ा जोर से। देश काल पात्र का कोई नियम नहीं है तो कभी करने की जरूरत नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, किसी भी देश में किसी भी काल में कोई भी समय कोई भी स्थिति में। नहीं, और कुछ थोड़ा? हाँ, उस समय तो ज्यादा लेना चाहिए। नाम लेने का उचित समय है जब हम पूर्ण अपना ध्यान भगवान पर लगा सके। यदि सुबह के समय, मान लो कि कोई नाइट ड्यूटी कर आया है, कई बार होती है नाइट ड्यूटी, होता ना भक्तों की नाइट शिफ्ट, तो नाइट शिफ्ट पूरे रात भर कहीं वॉचमैन या सिक्योरिटी या किसी फैक्ट्री में, और फिर उसे कहा गया है कि सबसे अच्छा समय जब का है ब्रह्म मुहूर्त, तो थका मांदा अब आदि शक्ति और पूरी शक्ति जाने वाली है और उस समय लेके वो सोलह माला करे तो क्या क्वालिटी रहेगा उसका। तो उस समय उस भक्त के लिए उचित समय क्या होगा कि वो ठीक से अपने शरीर को आराम दे, और जब मन और शरीर जैसे आपने कहा सक्षम रहे तब वो उचित समय है जप करने के लिए। हालांकि ब्रह्म मुहूर्त का समय उचित इसलिए बोला गया है क्योंकि सत्वगुण का प्रभाव हमारे ऊपर ब्रह्म मुहूर्त के समय ज्यादा होता है, होना चाहिए। साधारणतः सत्वगुण का प्रभाव ब्रह्म मुहूर्त के समय ज्यादा हमारे ऊपर होना चाहिए। कलयुग में सब गंगा उल्टी बह रही है, उस समय तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है अक्सर। एक भक्त बता रहे थे पौने छह से लेके साढ़े सात में जो नींद आती है ना मुझे, ऐसी सुख की नींद मुझे पूरे 24 घंटे में कभी नहीं आती। और टाइमिंग भी है पौने छह, बराबर पौने छह से साढ़े सात। हम कहे यदि रोज तुम यही करोगे पौने छह से साढ़े सात तो साढ़े सात ही लग जाएगी। तो उचित समय, अब जैसे भगवान को भोग चढ़ाना है, भगवान को भोग चढ़ाने की विधि ये भक्ति का अंग है कि नहीं? भगवान स्वयं बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो कोई व्यक्ति यदि कहे कि भगवान ने तो बोला लेकिन उसमें टाइम नहीं लिखा उस श्लोक में कौन से टाइम को ऑफर करना हा? तो रात के 2 बजे भगवान सोए हुए हैं और रात के 2 बजे यदि भगवान को उठाकर पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो अपराध है, वो अर्च विग्रह के प्रति अपराध है। तो भक्ति का ही अंग है भगवान को भोग चढ़ाना, परंतु सही समय पे होना चाहिए। आरती करना भगवान की भक्ति का अंग है परंतु सही समय पे होना चाहिए। वैसे ही भक्ति के सारे अंग यदि हम लें तो उनके साथ साथ उनका समय और किस स्थिति में किस देश काल पात्र जो कहते हैं उस प्रकार से होना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए वो सबसे उचित समय था भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सेनापति को पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार शुरू करने के लिए, क्योंकि जो हिप्पी कल्चर और उस समय धर्म की ग्लानी पाश्चात्य देश में अर्थात जो सनातन धर्म को इस प्रकार से किसी ने नहीं पेश किया था, श्रील प्रभुपाद पहले थे। तो ये तथाकथित जो भगवान गुरु जो प्रभुपाद के बाद जाना शुरू किए और फिर क्या कुछ उन्होंने नहीं किया पाश्चात्य देश में, तो श्रील प्रभुपाद जो 1965 में पहुंचे वहां पर वो सबसे उचित समय था पूरे कृष्ण भावनामृत इस आंदोलन को फैलाने के लिए अमेरिका से। और इसलिए जब भगवान के शुद्ध भक्त जान लेते हैं कि वो भगवान की भक्ति सही जगह पर सही समय पर कर रहे हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद इतना ज्यादा निष्ठावान थे भगवान पर, इतना विश्वास इतनी श्रद्धा कि श्रील प्रभुपाद बैठे हुए बेंच पर किसी एक व्यक्ति को कहे कि हमारे 108 मंदिर हैं, कई पुस्तकें वितरित हो रही हैं, जब उस व्यक्ति ने प्रभुपाद से पूछा कि आप यहां पर क्या करते हो पार्क में, और उस समय प्रभुपाद के पास एक मंदिर भी नहीं था, एक शिष्य भी नहीं, एक पुस्तक भी नहीं छपी थी, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जानते थे कि मैं सही समय पर आया हूं और सही चेतना में आया हूं। प्रभुपाद भविष्य देख रहे थे। तो अक्सर हमें भक्ति में थोड़ा संशय रहता है, पता नहीं हो पाएगी कि नहीं, पता नहीं कब तक गाड़ी पटरी पर रहेगी मेरी, भगवत धाम वो तो पता नहीं कब होगा। तो ये सारे जो संशय हैं, ये सब श्रील प्रभुपाद में क्यों नहीं देखे गए? इतना विश्वास, मंदिर जुहू में ही बनना है जहां पर सभी विरोध में हैं, सभी प्रभुपाद के निजी शिष्य आकर प्रभुपाद से अनुरोध करते हैं, प्रभुपाद छोड़ दीजिए इस जगह को, सारा बंबई में हम और कहीं पे मंदिर बनाते हैं। प्रभुपाद ने कहा नहीं, यहां पर वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर। अभी जो हम देखते हैं कृष्ण बलराम मंदिर, उस समय वो पूरा जंगल का इलाका था, तो सभी यहां कौन आएगा, इतने वीराने में कौन दर्शन करने आएगा, इतना बड़ा मंदिर इतने पैसे खर्चे कर रहे। प्रभुपाद ने कहा यहीं पर बनेगा मंदिर, मायापुर, वहां पर। यही सब प्रश्न भक्तों का कि कौन आएगा यहां पर। तो श्रील प्रभुपाद जैसे भक्त, जो भक्ति का हर एक कार्य अंग भक्ति का वो सही तरीके से सही समय पे करे, इसलिए उन्होंने भविष्य देख लिया। तो हम भी अपने जीवन का भविष्य देख सकते हैं यदि हम इस प्रकार का सही टाइमिंग रखें अपने हर एक भक्ति के कार्यों में। अब परीक्षित महाराज के ऊपर जो कृपा हुई भगवान की, उसमें यदि हम देखें तो भगवान ने स्वयं अपनी कृपा परीक्षित महाराज को कब दी? जब परीक्षित महाराज अपनी माता के गर्भ में थे। और अब यही भगवान की कृपा है कि भगवान सुखदेव गोस्वामी को भेज रहे, परंतु सुखदेव गोस्वामी को भगवान ने कब भेजा? अब जब तक्षक आकर 7 दिन के बाद डसने वाला है परीक्षित महाराज को, तो भगवान स्वयं क्यों नहीं आए? वही भगवान स्वयं गए जब परीक्षित महाराज के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था, और अब तक्षक, तब क्यों नहीं भगवान स्वयं आए? भगवान ने अपने निजी पार्षद शुक उनको भेजा। इसमें हम देख सकते हैं कि जब भगवान स्वयं व्यक्तिगत रूप से अपनी कृपा देते हैं, और जब भगवान अपनी कृपा अपने पार्षदों के द्वारा देते हैं, इन दोनों में अंतर देखिए। तो परीक्षित महाराज के जन्म के समय उनको जो कृपा प्राप्त हुई, और अब परीक्षित महाराज के मरते समय जो उनको कृपा प्राप्त हो रही है, इन दोनों कृपाओं में कौन सी कृपा ज्यादा बड़ी है? ये दूसरी। परंतु यहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण व्यक्तिगत रूप से नहीं है, हालांकि भागवत कथा के रूप में तो है। तो क्योंकि भगवान ने अपने पार्षद सुखदेव गोस्वामी को भेजा, तो इसमें हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन में भी यदि हम भगवान के भक्तों की कृपा की याचना करें, तो उसमें भगवान की ज्यादा कृपा को हम प्राप्त कर पाएंगे, ना कि भगवान क्यों नहीं आ रहे स्वयं। तो इसलिए इसकी हम चर्चा कर रहे थे कि वैदिक ग्रंथों में भगवत गीता भी लो या श्रीमद् भागवत भी लो, जन्म के ऊपर कोई ज्यादा उसे महत्व नहीं दिया गया, मरने के ऊपर महत्व दिया गया है कि मरते समय क्या करो, मरते समय क्या चेतना होनी चाहिए। जैसे यहां परीक्षित महाराज, तो सुखदेव गोस्वामी अब सही समय पर उन्होंने आगमन किया है। जब परीक्षित महाराज अपनी पूर्ण तीव्रता में कि अब कोई सहारा नहीं नजर आ रहा कि कौन मुझे मेरे वास्तविक कर्तव्य के विषय में बताएगा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमारे भी जीवन में उस स्थिति, उस समय, उस टाइमिंग के लिए रुके रहते हैं। और कई बार जब हम भगवान श्री कृष्ण की उस योजना को नहीं पहचान पाते, इसलिए हमें लगता है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, क्यों नहीं आते, अरे इतने भक्तों के लिए आए, मेरे लिए क्यों नहीं आते। तो कई बार जब हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं होपलेस कंडीशन, हेल्पलेस एंड होपलेस, उस समय भगवान जैसे द्रौपदी, क्या टाइमिंग भगवान ने डाला, द्रौपदी जितना प्रयास कर रही थी भगवान नहीं। अब भगवान पहले आके दुशासन को दो थप्पड़ मारकर वहीं पे खत्म कर सकते थे, परंतु दुशासन जो कुछ कर रहा था करने दिया, करने दिया, क्योंकि तब तक द्रौपदी उस तीव्रता की स्थिति तक नहीं पहुंची थी। फिर द्रौपदी ने अपने पतियों को पुकारा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इन सबको पुकारा, अंततः जब भगवान को पुकारा और वो भी पूर्ण तीव्रता में, तो भगवान का टाइमिंग देखिए, उस समय भगवान पहुंचे। इसलिए पूरे श्रीमद् भागवत में यदि हम लिस्ट निकालें तो भगवान और भगवान के पार्षद वो जब आए हैं अपनी कृपा बांटने के लिए तो परफेक्ट टाइम पर आए। नरसिंह भगवान परफेक्ट टाइमिंग उनके आने का, यदि नरसिंह भगवान सातवें स्कंद के पहले अध्याय में आ जाते तो सातवां स्कंद केवल एक दो अध्याय होता, और प्रहलाद महाराज का इतना गुणगान हम नहीं सुन पाते। इसलिए जब रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह, निश्चय और फिर धैर्य, अंतिम है धैर्य, तो यहां पर परीक्षित महाराज का उत्साह, परीक्षित महाराज का निश्चय, क्या निश्चय, कि मैं और कोई सहारा नहीं लूंगा। उनके पास बहुत से सहारे थे, वो स्वयं सक्षम थे तक्षक को रोकने में, परंतु उनको निश्चय था कि नहीं, अभी मेरा समय आ रहा है मरने का, तो मुझे इसे प्राकृतिक रूप से स्वीकार कर, परंतु सहारा लेना है भगवान का ही, केवल शुद्ध भक्ति का, परंतु कौन मुझे वो देगा, धैर्य रखा तो सुखदेव गोस्वामी प्राप्त हुए, श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उसी प्रकार से हम परीक्षित महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, पांडव, इन सब के उदाहरण से हम क्या समझते हैं, उत्साह, निश्चय और अंततः धैर्य का अर्थ क्या है, वो राइट टाइम की प्रतीक्षा में रहना, परफेक्ट टाइमिंग, जैसे कि यहां सुखदेव गोस्वामी ने अभी ये हिंदी सिनेमा में दिखाया जाता है ना, परफेक्ट टाइमिंग हीरो पहुंचता है और जब सब कुछ कर दिया हीरो ने तब पुलिस पहुंचती है, उसका भी परफेक्ट टाइमिंग रहता है। तो वैसे यहां पर सुखदेव गोस्वामी का परफेक्ट टाइमिंग, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने भी परफेक्ट टाइम पर क्लास खत्म कर दिया। किसी का कोई प्रश्न? आप शायद माइक के इंचार्ज हैं। अच्छा अच्छा ठीक है जोर से बोलिए। प्रश्न है कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी आने से पहले अपने वास्तविक कर्तव्य का प्रश्न सारे एकत्रित ऋषि मुनि से पूछा, जिसमें नारद मुनि और व्यास देव जी भी थे, तो क्यों उन्होंने भागवत नहीं सुनाई? यहां पर बताया है वही व्यास देव जी ने भागवत सुखदेव गोस्वामी को सुनाई। तो सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनी कहां से, किससे? अपने पिता व्यास देव जी से। ये हमें समझना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी, उन्हें भगवान ने नियुक्त किया था श्रीमद् भागवत सुनाने के लिए। जैसे अभी गोविंदानंद प्रभु भी भागवत क्लास आज दे सकते थे, गोपालन प्रभु दे सकते थे, लेकिन गोपालन प्रभु सर्विस इंचार्ज है तो उन्होंने आज मुझे नियुक्त किया। तो उन्होंने मुझे बोला दो दिन पहले कि रोजी आपको क्लास देना है संडे को। तो उनके आदेशों का पालन आज किया हमने। तो वैसे ही जैसे कि ये एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, दूसरा प्रसंग इसी पहले स्कंद में, भीष्म पितामह वो भगवत धाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, अपना शरीर त्याग रहे हैं और वो बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। और उस समय युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछते हैं कि ये सारा युद्ध, इतने लोग मारे गए क्योंकि मुझे यह हस्तिनापुर का राज्य दिलाना था, इसलिए क्या यह सही था या गलत था? तो भगवान श्री कृष्ण, हम यहां पर आप पूछ रहे हैं कि नारद मुनि और व्यासदेव, यहां भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं, संतुष्टि नहीं हुई। सोचिए कई बार जब हम किसी को उत्तर देते हैं और अगला व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता तो थोड़ा अहंकार को ठेस पहुंचती है, संतुष्ट नहीं हुआ। यहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को उत्तर दिए, युधिष्ठिर महाराज संतुष्ट नहीं हुए, तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह के पास लेकर गए। क्योंकि ऐसा नहीं कि भगवान संतुष्ट नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं कि भगवान सक्षम नहीं थे, जैसे कि व्यासदेव जी भी सक्षम थे, परंतु उस समय, फिर से टाइमिंग, उस समय भीष्म पितामह के मुख से जो दिव्य ज्ञान भगवान सुनाना चाहते थे हम सबको, इसलिए यहां पर देखिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यासदेव से श्रीमद् भागवत सीखी लेकिन उन्हें उसे सुनाने का अवसर नहीं मिला। तो यह अवसर दिया किसने? व्यासदेव जी ने, नारद मुनि ने, स्वयं भगवान ने, है कि नहीं? जैसे कि श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद कई बार अपने शिष्यों को बोलते चलो तुम क्लास दो आज, और प्रभुपाद बैठकर सुनते। तो सोचिए प्रभुपाद के सामने बोलना, और ऐसा नहीं था कि ये लोग पूरा भक्ति शास्त्री का कोर्स किए बैठे थे, बस कुछ महीने हुए हैं, कोई पुस्तकें भी नहीं पढ़ी, बाटी ज्यादा है। तो ऐसा नहीं कि व्यासदेव जी ये सोच रहे थे कि चलो मेरा लड़का सुनाएगा, देखते हैं कैसे सुनाता है। जब पिताजी कई बार अपने बेटे को आगे करते, मेरा बेटा भी अच्छा बोलता है, सुनो सुनो, तो वो धारणा नहीं थी। ये सब भगवान की योजना, भगवत योजना, कि सुखदेव गोस्वामी जैसे भगवान के बहुत ही निकटतम पार्षद को भगवान भागवत सुनाने का श्रेय देना चाहते थे। और इसलिए आप देखो कि वही भागवत जो सुखदेव गोस्वामी ने सुनी, ये बताया गया है कि सुखदेव गोस्वामी के से मुख से जब निकली वही भागवत तो और मधुर होकर निकली। सुख मुखा द्रव्य संयुतम, और मधुर होकर निकली। तो इसलिए सभी चाहते थे कि जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से वही भागवत निकलेगी तो और मधुरता, तो उनको भी सुनना था कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से, परीक्षित महाराज तो सुनेंगे ही, और परीक्षित महाराज के साथ साथ हम भी जो सुखदेव गोस्वामी के साक्षात्कार हैं भागवत के, वो सुनने मिलेंगे। तो ये सारे कारण थे कि सुखदेव गोस्वामी को, उन्हीं को चुना गया सुनाने के लिए। सही नहीं, वो गलत वर्जन है। जो भागवत में दिया गया है वो सही वर्जन है उसका। नहीं, जहां तक महाभारत का सवाल है, महाभारत कलयुग में जो ओरिजिनल महाभारत है वो ऑलमोस्ट लुप्त हो गया है। उसके बहुत से इंटरप्रेटेड वर्जन्स है महाभारत के। तो हालांकि आप कौन से लेखक की बात कर रहे हो, आप व्यासदेव जी की बात नहीं कर रहे, जो कौन सा महाभारत आपने पढ़ा होगा किसी प्रेस का?
ये जो 1830 में एक लेखक हुए गांगुली करके, उन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया है, और भक्ति विद्यापूर्ण महाराज को रेफर करते।
तो आप भक्ति विद्यापूर्ण महाराज से पूछिए फिर, क्योंकि हृदयानंद महाराज जो कि महाभारत पूरा वो ट्रांसलेट करने के लिए उन्होंने वो शुरू किया, तो बीच में उन्होंने बंद किया, क्योंकि ये उन्होंने देखा कि जितने सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं महाभारत के, बहुत से करप्टेड हैं, इंटरप्रेटेड हैं, और एज इट इज नहीं। इसलिए यदि महाभारत को आप लो तो हर समय बहुत से प्रश्न उसके ऊपर रहते हैं कि उसमें से कौन से प्रसंग सही तरीके से बताए गए हैं। इसलिए जो महाभारत के प्रसंग भागवत में बताए गए हैं वो सबसे ज्यादा प्रामाणिक है। इसलिए हम महाभारत को भागवत के साथ समझते हैं, और इसलिए हर समय महाभारत के जो प्रसंग भागवत में वर्णित हैं तो अथॉरिटी भागवत ज्यादा बड़ा है महाभारत से, क्योंकि महापुराण अमल पुराण है भागवत, इसलिए। शिव कुमार प्रभु राइट टाइम पे ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किए हैं, आप लोगों को सूचित करना चाहेंगे कि हाल ही में उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया है, हो गया ना? गुरु साधु और शास्त्र, कौन सा समय उचित है, कौन से व्यक्ति उचित हैं, गुरु साधु और शास्त्र से हम समझते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज जैसे जो महान भक्त होते हैं, जिनके जीवन का संचालन स्वयं भगवान व्यक्तिगत रूप से करते हैं, और यदि परीक्षित महाराज के भी संदर्भ में आप देखो तो उनके गुरु शुकदेव गोस्वामी, तो शुकदेव गोस्वामी ने पहुंचने के बाद फिर परीक्षित महाराज को बताया कि क्या उचित है उनके लिए। परंतु शुकदेव गोस्वामी का उचित समय पर आना, गुरु का उचित समय पर आना, वो परीक्षित महाराज की सिंसियरिटी पर निर्भर था। तो यदि हम सिंसियर हैं, प्रामाणिक हैं, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा उचित समय होगा और कौन सा व्यक्ति उचित होगा जो मेरे उद्धार के लिए नियुक्त होगा। जैसे यहां पर परीक्षित महाराज सिंसियर, तो सही समय पे सही व्यक्ति आ गए। और ऐसे हम यदि अपने भी जीवन में देखें तो कितने भक्त हरे कृष्ण आंदोलन में उन्होंने इनिशियल सिंसियरिटी दिखाई और शिला प्रभुपाद की बुक मिल गई उन्हें, कहीं भी प्रसाद मिल गया, भक्तों का संग मिल गया, प्रभुपाद के संपर्क में आ सके, और फिर जाकर वो रिफ्लेक्ट करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि हां मैंने वो इनिशियल सिंसियरिटी दिखाई थी। जैसे मुझे याद है कि जब ये 1993 की बात है, जब मैं कानपुर में था, वहां पर एक मित्र से मैं मिलने जाया करता था, एक ही मित्र था केवल मेरा, उससे मिलने जाया करता था। तो एक दिन जब मैं उसके कमरे मैं प्रवेश ही करने वाला था, उसके कमरे के बाहर एक कचरे का डब्बा था बड़ा, और उस कचरे के डब्बे में एक इस्कॉन की फोटो भगवान श्री कृष्ण की, बहुत सुंदर, एक ग्रीटिंग कार्ड के ऊपर वो किसी ने कचरे में फेंकी हुई थी। तो और वो भगवान श्री कृष्ण की वो बीबीटी की फोटो है, वो अकेले भगवान ऐसे बांसुरी हाथ में लिए, बजा नहीं रहे, हाथ में लिए बांसुरी। मैंने बचपन में पेंट किया था एक ड्राइंग कंपटीशन में, तो मुझे लगा कि ये मैंने बचपन में ये भगवान श्री कृष्ण की एक पेंटिंग की थी और किसी ने कचरे के डब्बे में इतनी सुंदर पेंटिंग, इतनी सुंदर फोटो। तो उस दिन मैंने वो उठाई फोटो और जाकर अपने लॉकर में रख कर उसे लॉकर में रखा, तो फिर सोचा कि भगवान को कुछ अर्पित करना चाहिए, तो अगरबत्ती रोज अर्पित करना शुरू किया। उसके ठीक एक हफ्ते बाद भक्तों के संग में मैं आया, तब फिर मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि थोड़ा सा सिंसियरिटी यदि कोई व्यक्ति दिखाता है तो भगवान देखो क्या कुछ नहीं करके देते। और हम सबके जीवन में यदि आप देखो तो वो इनिशियल एक सिंसियरिटी था कि हम या तो उब गए थे संसार से, या हो सकता है कि कई भगवान को ही ढूंढ रहे हो आप लोग, कहां है हे कृष्ण, कोथा है कृष्ण। और भगवान ने फिर किसी भक्त को भेजा भगवत गीता के साथ, आप रास्ते में चल रहे हो और किसी भक्त ने आपको रोका, ये भगवत गीता आपके लिए। ऐसे बहुत से भक्तों के साथ हुआ है, वो रास्ते में चल रहे हैं और अचानक कोई बुक डिस्ट्रीब्यूटर आकर उनको भगवत गीता थमाकर, फिर कभी जिंदगी में उस बुक डिस्ट्रीब्यूटर से वो कभी नहीं मिले, परंतु अब वो भक्त बन गए। तो भगवान का परफेक्ट टाइमिंग और जो भी स्थिति, वो हमारी सिंसियरिटी पर निर्भर। तो चिंता मत कीजिए, आपका परफेक्ट टाइमिंग है। कुछ और टाइमिंग होने से पहले आपका परफेक्ट टाइमिंग हो गया। हाँ, संजय उवाच। इस अध्याय से क्या संबंध? इस अध्याय का शीर्षक है सुखदेव गोस्वामी का आगमन, तो उनका वर्णन नहीं होगा तो किसका वर्णन होगा? हाँ, वही तो मैं बताया कि उनका शरीर दिव्य है, उनकी सुंदरता दिव्य है। तो ऐसा नहीं कि भगवान के भक्तों की सुंदरता का वर्णन नहीं होता, नहीं होता है ना, भगवान के भक्तों की सुंदरता के भी वर्णन होता है। और इसलिए यहां पर यह हम समझ सकते हैं कि वर्णन इसलिए भी किया गया है कि जो जन साधारण सुखदेव गोस्वामी को एक पागल मान रहे थे, उन सुखदेव गोस्वामी को इन सभियों ने कैसे देखा, महान ऋषियों ने कैसे देखा, क्यों उनकी जो सुंदरता और दिव्यता, उनको इन्होंने कैसे देखा। तो वही व्यक्ति परंतु जिसके अंदर भक्ति है, तो भक्ति के द्वारा उस व्यक्ति की महानता सुंदरता को व्यक्ति देख सकता है। और इसलिए सुखदेव गोस्वामी सभी को मोहित कर रहे थे अपनी सुंदरता से, आध्यात्मिक तरीके से, भौतिक तरीके से नहीं, आध्यात्मिक तरीके से। हालांकि एक वस्त्र भी नहीं पहना सुखदेव गोस्वामी ने, सुखदेव गोस्वामी निर्वस्त्र। अब देखिए, वही नारद मुनि बैठे हैं जिन्होंने नलकूप और मणिग्रीव को श्राप दिया, क्यों? क्योंकि वह निर्वस्त्र थे। और वही नारद मुनि सुखदेव गोस्वामी के सामने बैठकर पूरी भागवत सुने, दिव्यता, उनकी दिव्यता, उनकी दिव्य सुंदरता को देखा। इसलिए भगवान की सुंदरता का बखान जैसे होता है ग्रंथों में, उसी प्रकार और कई बार उससे ज्यादा भगवान के भक्तों की सुंदरता का गुणगान किया जाता है। परंतु वो सुंदरता होती क्या है? उनके आध्यात्मिक दिव्य गुणों की सुंदरता। तो सुखदेव गोस्वामी का शरीर कोई हमारी तरह नहीं, पंच महाभूत से बना हुआ दिव्य शरीर है उनका, भगवान के नित्य पार्षद हैं वो। इसलिए हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।